रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इशारा मिलते ही रूसी सेना ने गुरुवार सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया। कल शाम रूसी सैनिक यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीरें अब टीवी पर सामने आने लगी हैं और व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बल के साथ पूरा किया जाएगा। व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले की शुरुआती घंटों में ही दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आई है। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल का कहना है कि रूसी सेना ने क्षेत्र में घंटों की लड़ाई के बाद चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर कब्जा कर लिया है।
Unfortunately, I'll have to inform you that at this moment that the Chernobyl zone, the so-called exclusion zone and all infrastructure of the Chernobyl nuclear power plant are controlled by Russian military forces. There are no casualties, according to the authorities of the exclusion zone and of the nuclear power plant.
ये संयंत्र राजधानी कीव से 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और विकिरण को रोकने के लिए एक सुरक्षात्मक आश्रय में कवर किया गया है। कीव में विस्फोट और गोला बारूद की आवाजें सुनी गई हैं, जबकि यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी विमानों को मार गिराया है। इस घटनाक्रम के चलते राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश भर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है।
Dear Ukrainians, this morning President Putin announced a special military operation in the Donbas. Russia carried out strikes on our military infrastructure, on our border guards. Explosions were heard in many cities of Ukraine. We introduced martial law throughout the state. A minute ago I had a conversation with President Biden. The US is starting to gather international support.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन पर रशिया का आक्रमण कहीं अधिक व्यापक आक्रमण की शुरुआत हो सकता है।
He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, re-establish the former Soviet Union. That's what this is about. And I think that his ambitions are completely contrary to the place where the rest of the world has arrived.
व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूसी आक्रमण में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास के परिणाम होंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नागरिकों से आगे आने और देश की रक्षा करने का आह्वान किया है। हमलों के पहले घंटों में 40 यूक्रेनी सैनिक और 10 नागरिक मारे गए थे और यूक्रेनी सेना डोनबस और अन्य क्षेत्रों में रूसी हमलों को पीछे हटाने के लिए भारी लड़ाई में शामिल थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि देश के नागरिकों को हथियार दिए जाएंगे यदि वे चाहते हैं, जो एक हताश अंतिम उपाय है।
We are already handing out weapons and will hand them out to defend our country to everyone who wants and has the capacity to defend our sovereignty. The future of Ukraine depends on every citizen.
उन्होंने यूक्रेन के लोगों से अस्पताल में घायल सैनिकों के लिए रक्तदान करने का भी आग्रह किया है। वहीं यूरोपियन कमीशन ने रशिया के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की है। कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेयर लियन का कहना है कि प्रतिबंध रशिया के आर्थिक आधार और आधुनिकीकरण की क्षमता को कमजोर करेंगे। वे कहती हैं यूरोपियन यूनियन में रूसी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया जाएगा और रूसी बैंकों को यूरोपीय वित्तीय बाजारों तक पहुंचने से रोका जाएगा। वे कहती हैं कि यूरोपियन यूनियन इस संकट के समय में यूक्रेन के साथ खड़ा है।
And once again in the center of Europe, innocent women, men and children are dying of fear for their lives. We condemn this barbaric attack. And the cynical arguments to justify it. It is President Putin who is bringing war back to Europe.
रूसी सेना के यूक्रेन में आक्रमण के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने निंदा की और रशिया पर और प्रतिबंधों की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया रशिया की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 8 सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंध लगा रहा है, जो प्रधानमंत्री के अनुसार ये वे लोग हैं जो इस आक्रमण को सहायता और बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा 25 और लोगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनमें सेना कमांडर और उपरक्षा मंत्री शामिल हैं। स्कॉट मॉरिसन का कहना है कि प्रतिबंधों से बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रशिया के इस कदम की निंदा करने के लिए मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
The Russian government declared that they had commenced a so-called special military operation in Ukraine. And they said this after months of aggression and intimidation. But I will call it what it is. The Russian government launched a brutal invasion, unprovoked, on Ukraine and should be condemned for doing so.
पोलैंड जैसे पड़ोसी देशों ने भी रशिया के इस कदम की निंदा की है और कहा है कि वे यूक्रेनियन शरणार्थियों का स्वागत करेंगे। पोलैंड के इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर मरियस कमिनस्की ने कहा,
We've been preparing for weeks to face the wave of refugees that can be expected. We'll do everything possible to make those in need find a shelter in Poland. Poland is a safe country for its citizens and it will be a safe place for our neighbors, friends, and those in such a difficult situation. We'll continue to support the Ukrainian state and the Ukrainian nation. Every Ukrainian may expect solidarity from the Polish state, and I believe every Polish citizen too.
UN High Commissioner ki human rights pravakta Ravina Shamdasani ne nagrikon ke liye chinta vyakt ki hai aur antarrashtriya kanoon ke ullanghan ke roop mein Russia ki ninda karte hue kaha,
The UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, is deeply alarmed about the Russian Federation's military attacks against Ukraine. Civilians in various parts of Ukraine were awoken today by the sounds of heavy bombardment and are terrified of further escalation, with many fleeing their homes. This military action clearly violates international law and puts at risk countless civilian lives. It must be immediately halted.
SBS News ki is report ko prastut kiya hai Natasha Kol ne SBS हिंदी के लिए।